हाँ, हम सबके दिमाग में ना बचपन से एक बात बहुत गहरी तरह से बैठाई जाती है। थोड़ा सोचिए इस बारे में।
हाँ बिल्कुल, एकदम सीधी सी धारणा होती है।
वही ना, मतलब एक आम धारणा होती है कि ये जो दुनिया है ये एकदम सीधे और सटीक हिसाब किताब पर चलती
यही
है।
बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा।
अगर इंसान अच्छे काम करेगा तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और अगर कोई बुरे काम करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। जैसे जैसे मैथ्स का कोई बिल्कुल सुलझा हुआ फॉर्मूला हो।
और हम पूरी जिंदगी इस उम्मीद में निकाल देते हैं कि हमारी अच्छाई एक दिन हमें एक बेहतर जिंदगी देगी।
हाँ, और हम ना इस दुनिया को एक वेंडिंग मशीन की तरह देखने लगते हैं। एक सिक्का डालो अच्छे काम का, एक बटन दबाओ और वहां से इनाम, खुशियां और सुरक्षा बाहर आएगी।
लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है ना।
बिल्कुल नहीं होता। जब जिंदगी में सच में कुछ बहुत बुरा होता है, और वो भी किसी बहुत ही भले और ईमानदार इंसान के साथ, तो ये जो वेंडिंग मशीन है ना, ये बुरी तरह हिलने लगती है।
हाँ, क्योंकि हमने तो अच्छे काम का सिक्का डाला था।
पर बाहर कोई इनाम आने के बजाय दुख और परेशानी गिर पड़ती हैं, तब ये फॉर्मूला पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे सृष्टि के संचालक ने हमारे साथ कोई धोखा किया हो।
या फिर अचानक से सारे नियम ही बदल दिए हों।
सही कहा। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी सदियों पुराने, दिल को कुरेदने वाले सवाल को उठाने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के रूप में डॉक्टर जॉन वॉल्टन का एक बेहद गहरा विश्लेषण है।
जी, जो उन्होंने पुरातन कथाओं और खास तौर पर बुक ऑफ जोब यानी अय्यूब की किताब के एक खास हिस्से पर किया है,
हाँ, सेशन 17 चैप्टर 28 पर।
और उनका ये रिसर्च हमें एक ऐसा चौंका देने वाला नजरिया देता है जो इस पूरे अच्छे और बुरे के समीकरण को जड़ से हिलाकर रख देगा।
बिल्कुल। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि इस विश्लेषण को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कहानी के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा।
उसकी पृष्ठभूमि को।
तो जोब की कहानी में एक लंबा दौर गुजर चुका है जहां उसके दोस्तों के साथ उसकी लगातार थका देने वाली बहस चलती रही, पर अब स्रोत के अनुसार वो लंबा वाद विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
अच्छा, तो वहां पर सिचुएशन अब थोड़ी शांत है।
एक तरह से हाँ। शुरुआत में एक चैलेंजर यानी चुनौती देने वाले ने सृष्टि के संचालक के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। उसका दावा था कि कोई भी इंसान बिना किसी लालच के अच्छा नहीं होता।
मतलब लोग सिर्फ इनाम पाने के लिए अच्छे बनते हैं, वही वेंडिंग मशीन वाली बात। चैलेंजर का कहना था कि लोग सिर्फ वेंडिंग मशीन से खुशियां निकालने के लिए धार्मिकता का दिखावा करते हैं, अगर इनाम मिलना बंद हो जाए तो कोई अच्छा नहीं रहेगा।
लेकिन जोब ने तो उस दावे को गलत साबित कर दिया ना।
पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। उसने साबित कर दिया है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे या इनाम की उम्मीद के भी एक इंसान धार्मिकता बनाए रख सकता है,
ओ वाओ।
बिना किसी उम्मीद के।
हाँ,
और इसको स्रोत में डिसइंटरेस्टेड राइचियसनेस कहा गया है, यानी बिना किसी निहित स्वार्थ की धार्मिकता। तो वो जो एक लंबा केस चल रहा था उसके दोस्तों के साथ कि तुमने जरूर कुछ बुरा किया होगा इसलिए बुरा हो रहा है, वो केस अब डिसमिस हो चुका है।
ये सच में एक बड़ा पड़ाव है, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर दोस्तों की बात मान ली जाती तो इसका मतलब यही होता कि वेंडिंग मशीन तो ठीक है, बस जॉब ने ही कोई खोटा सिक्का डाला होगा।
बिल्कुल, पर कहानी ने साबित कर दिया कि जॉब ने कोई खोटा सिक्का नहीं डाला।
उसने पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जिया, फिर भी उसके हिस्से में इतनी तकलीफें आईं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये दुनिया वाली वेंडिंग मशीन दरअसल खराब ही है।
यही सबसे बड़ा सवाल है जो स्रोत उठाता है।
क्योंकि जब ईमानदारी का फल तकलीफ हो सकती है तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। अगर दुनिया इस रेट्रीब्यूशन प्रिंसिपल यानी कर्मों का फल वापस देने वाले नियम पर नहीं चलती, तो आखिर इस पूरे कॉस्मोस का संचालन किस आधार पर होता है?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सीधा हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है, और यही चुनौती हमें कहानी के उस हिस्से में ले जाती है जिसे डॉक्टर वॉल्टन ने अपने विश्लेषण का केंद्र बनाया है।
मतलब चैप्टर 28 पर।
हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां कहानी अचानक एक बिल्कुल नया रुख लेती है। अक्सर लोग पढ़ते हुए सोचते हैं कि ये बातें जॉब खुद कह रहा है, पर स्रोत हमें बताता है कि ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है।
वेट, सच में? तो ये जॉब नहीं बोल रहा?
नहीं, कहानी यहां अचानक रुकती है, और दरअसल ये एक नरेटर यानी कहानीकार का इंटरमिशन या मध्यांतर है।
ओह, जैसे किसी नाटक के बीच में ब्रेक आता है।
बिल्कुल वैसे ही। इसे आप एक नाटक के उस पल की तरह सोच सकते हैं जब पर्दा थोड़ी देर के लिए गिरता है और कहानीकार सीधे दर्शकों को संबोधित करने आता है, ताकि उनकी सोच को एक नए दृष्टिकोण, एक नई दिशा में ले जा सके।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इंटरमिशन हमें उस बंद गली जैसी बहस से बाहर निकालता है।
सही कहा। ये हमें सृष्टि के काम करने के बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश कराता है।
और पता है, इस नई दिशा की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और ध्यान खींचने वाले उदाहरण से होती है। मैं पढ़ रही थी कि कहानीकार सीधे कॉस्मिक नियम नहीं समझाता।
हाँ, वो एक मेटाफर यूज करता है।
राइट, वो माइनिंग यानी खुदाई का बड़ा ही सुंदर रूपक पेश करता है। वो बताता है कि इंसान कितना काबिल, कितना मेहनती और चतुर है।
इंसानी क्षमता की बात होती है वहाँ।
बिल्कुल, इंसान जमीन का सीना चीरकर उसके सबसे गहरे अंधेरों में जा सकता है, पहाड़ों को तोड़कर चांदी, सोना, लोहा और ना जाने कितने कीमती पत्थर निकाल लाता है।
जो चीजें सृष्टि ने सबसे गहरी जगह छुपा कर रखी हैं, इंसान उन्हें भी ढूंढ निकालता है।
हाँ, इंसान अपनी क्षमता से उन्हें भी रोशनी में लाने में माहिर है। एक तरह से हम अपनी काबिलियत पर पूरा गर्व कर सकते हैं। लेकिन फिर कहानीकार एक ऐसी रुकावट खड़ी करता है जो सब कुछ बदल देती है।
वो रुकावट ज्ञान से जुड़ी है ना?
एग्जैक्टली, वो कहता है कि ज्ञान यानी जो असली विजडम है, वो इंसानी कोशिशों और दुनिया की खरीदो फरोख्त के दायरे से बिल्कुल बाहर है। इंसान इसे ढूंढ नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी गहरी खुदाई क्यों ना कर ले।
सही कहा। कहानीकार यहाँ इंसानी काबिलियत को नीचा नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो एक कॉस्मिक लेवल की समस्या को सामने रख रहा है। वो कह रहा है कि जिस विजडम या ज्ञान से इस दुनिया का संचालन होता है, जिस ज्ञान से ये सृष्टि बनी है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान मेहनत या दौलत से हासिल कर सके।
मतलब वो किसी पत्थर की तरह जमीन के नीचे नहीं घड़ी है।
बिल्कुल नहीं, इंसान ने जमीन से कीमती चीजें निकालनी है, पर ये ज्ञान तो इतना बेशकीमती है कि इसकी पहुंच इंसान के दायरे में आती ही नहीं है। ये अंधेरे में टॉर्च चलाकर ढूंढने वाली चीज नहीं है।
पर रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी असहमति महसूस होती है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी इस पर।
हाँ, बताइए।
अगर हम ये मान लें कि असली ज्ञान जो इस दुनिया के चलने का तरीका समझाता है, वो इंसान की पकड़ से बिल्कुल बाहर है, तो हम इसे मुद्दत से ढूंढ क्यों रहे हैं?
ये एक बहुत लॉजिकल पॉइंट है,
है ना? फिर तो कहानीकार को कह देना चाहिए कि उम्मीद ही छोड़ दो। अगर हमें पता है कि हम जमीन खोदकर या आसमान छानकर उस तक नहीं पहुंच सकते, तो इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा ही क्या है? हम दुख में जवाब ढूंढते हैं, पर क्या हम बस अंधेरे में ही तीर चलाते रहने वाले हैं?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही वो जगह है जहां इस इंटरमिशन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट निकल कर आता है।
अच्छा, वो कैसे?
अगर हम डॉक्टर वॉल्टन के विश्लेषण पर गहराई से ध्यान दें, तो समझ आता है कि कहानीकार हमें निराश नहीं कर रहा है, वो दरअसल हमारा नजरिया ठीक कर रहा है।
नजरिया ठीक कर रहा है मतलब?
मतलब हमें ज्ञान की खोज यानी सर्च और ज्ञान के स्रोत यानी सोर्स, इन दोनों के बीच का जमीन आसमान का फर्क समझना होगा।
खोज और स्रोत के बीच का फर्क?
हाँ। ज्ञान कोई ऐसा कीमती पत्थर नहीं है जिसे आप मेहनत से ढूंढकर निकाल लाएंगे। ज्ञान सीधे सृष्टि के रचयिता यानी ईश्वर की तरफ से आता है। ईश्वर ही इस ज्ञान का एकमात्र स्रोत है।
तो कहानीकार बेसिकली ये कह रहा है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं।
एग्जैक्टली। कहानीकार हमें समझा रहा है कि इंसान को इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकने के बजाय सीधे उस स्रोत की तरफ देखना होगा। खुदाई बंद करनी होगी और ऊपर देखना होगा।
ओ, खुदाई बंद करनी होगी, ये बहुत गहरी बात है। और जब हम उस स्रोत की तरफ देखते हैं, तब चर्चा सच में अपने सबसे हैरतअंगेज मोड़ पर पहुंचती है।
बिल्कुल,
क्योंकि जोब और उसके दोस्त, और सच कहूं तो आज के दौर में हम सब भी अब तक यही सोचते थे कि इस दुनिया का, इस कॉस्मोस का सिस्टम जस्टिस या न्याय पर आधारित है।
वही पुरानी वेंडिंग मशीन वाली सोच।
हाँ, वही वेंडिंग मशीन, अच्छे को इनाम, बुरे को सजा। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन ने स्रोत में इस सोच की बुनियाद को ही हिला दिया है। वो बताते हैं कि जब सृष्टि बनाई गई, तब उसके नियम तय करते वक्त ईश्वर ने इसे जस्टिस की कसौटी पर नहीं परखा था।
इसे थोड़ा ठहर कर समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक छोटी सी लाइन पूरे ढांचे को उलट देती है।
सच्ची में मैं तो हैरान रह गई थी पढ़कर।
जोब के दोस्तों का पूरा वाद विवाद इसी बुनियाद पर टिका था कि सृष्टि का हर कोना न्याय यानी जस्टिस से संचालित होता है। उन्हें लगता था कि अगर दुनिया में बदलाव होता है, तो वो सिर्फ न्याय के आधार पर होता है।
लेकिन कहानीकार इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ देता है ना?
हाँ, सृष्टि का आधार, उसका फाउंडेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम न्याय है ही नहीं। इसका फाउंडेशन विजडम है, एक ऐसी आला दर्जे की बुद्धि जो हमारी समझ से बाहर है।
वेट, मतलब सिस्टम का फाउंडेशन न्याय नहीं बुद्धि है? ये तो सच में दिमाग के दरवाजे खोल देने वाली बात है, और थोड़ा डराने वाली भी।
डराने वाली क्यों?
सोचो तो, हम पूरी जिंदगी हर तकलीफ में आसमान की तरफ देखकर बस यही पूछते निकाल देते हैं कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। हम न्याय की मांग कर रहे होते हैं जबकि सृष्टि तो एक बिल्कुल अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही है
जो कि सृष्टि के रचयिता की विजडम है।
एग्जैक्टली और यही रियलाइजेशन हमें उस स्रोत की सबसे प्रसिद्ध पर उतनी ही मुश्किल लाइन तक ले आता है कि ईश्वर का डर ही ज्ञान है।
वर्स 28।
हाँ, अब यहाँ एक आम इंसान की तरह सोचो तो ये शब्द डर या फियर सुनते ही दिमाग में सबसे पहले किसी डिक्टेटर की छवि बनती है, एक ऐसा कठोर शासक जो चाहता है कि उसकी प्रजा उससे हर वक्त डर कर रहे और कांपती रहे।
एक नकारात्मक छवि।
वही तो, क्या ये डर की भावना थोड़ी परेशान करने वाली नहीं लगती? डरना आखिर ज्ञान कैसे हो सकता है?
यही वजह है कि पुरानी कथाओं के शब्दों के सही मायने और उनके कॉन्टेक्स्ट को ठीक से समझना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर वॉल्टन अपने विश्लेषण में इस डर शब्द की गहराई में उतरते हैं।
तो इसका असल मतलब क्या है फिर?
यहाँ डरने का मतलब किसी तानाशाह के शोषण या उसके गुस्से से डरना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है सृष्टि के रचयिता को उनके पूरे वजूद के साथ सीरियसली लेना।
सीरियसली लेना?
हाँ, उन्हें गंभीरता और आदर के साथ स्वीकार करना। इसे और साफ करने के लिए डॉक्टर वॉल्टन ने 6 ऐसे विरोधाभासी छवियों का इस्तेमाल किया है जो ये दिखाते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है।
ओ, ये इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस डर वाले पहलू को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये 6 विरोधाभास आखिर हैं क्या?
देखिए, अगर हमें सच में उस स्रोत को सीरियसली लेना है तो हमें कुछ गलतियों से बचना होगा। पहला, हम संचालक को डिटैच्ड या इस दुनिया से अलग थलग नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है कि उसने दुनिया बनाई और अब उसे परवाह नहीं।
ओके, तो वो इन्वॉल्व्ड है?
बिल्कुल। दूसरा, हम उन्हें इनकॉम्पिटेंट या अक्षम नहीं मान सकते कि उनसे दुनिया के हालात संभाले नहीं जा रहे। तीसरा, वो लिमिटेड या सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ताकत की कमी है।
मतलब वो फुली केपेबल और लिमिटलेस है।
सही। चौथा, वो करप्ट या भ्रष्ट नहीं है। वो किसी लालच या रिश्वत के आधार पर फैसले नहीं लेते। पांचवा, वो शॉर्ट साइटेड या अदूरदर्शी नहीं है। हमें लगता है कि हम कल देख सकते हैं पर रचयिता पूरी इटर्निटी देख सकता है।
तो हम उन्हें अपनी जैसी छोटी सोच वाला नहीं मान सकते।
एग्जैक्टली। और छठा, जो सबसे अहम है, वो पेटी या तुच्छ नहीं है। कि उनकी बातों का इंसानी रूप में बुरा माना जाए या वो किसी छोटी सी बात पर चिढ़कर सजा देने लगे।
ओ वाओ, तो जब हम इन सब बातों पर गौर करते हैं तो समझ आता है कि ईश्वर का डर होने का असली मतलब यही है कि हम उन्हें इन सब इंसानी कमजोरियों से बिल्कुल मुक्त मानते हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
अगर हम मुश्किल वक्त में सोचते हैं कि ऊपर वाले को दिखाई नहीं दे रहा या वो करप्शन चलने दे रहा है, तब हम दरअसल उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम उनकी आला दर्जे की विजडम को छोटा कर रहे हैं।
हाँ, और यही वो गलती है जो दोस्तों ने की थी।
तो डरने का मतलब एक तरह का गहरा आदर, एक ओ, और ये स्वीकार करना है कि उनकी समझ हमारी छोटी सी समझ से कहीं ज्यादा विशाल है। वो कोई छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाले छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है।
सही बात है। और यहाँ पर स्रोत में डॉक्टर वॉल्टर ने एक ऐसी बेहतरीन डिटेल की तरफ इशारा किया है जिसने चर्चा को और भी दिलचस्प बना दिया है।
जी, आप उस खास शब्द के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहे हैं ना?
हाँ, वही वर्ड प्ले।
बिल्कुल। पता नहीं कितने लोगों ने इसे पढ़ते वक्त इस डिटेल पर गौर किया होगा। जब ये बात आती है कि किसका डर ज्ञान है, तो उस जमाने के जो सबसे आम शब्द थे रचयिता के लिए, जैसे याहुवे, एलोहिम या शड्डाए, कहानीकार ने उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं किया है।
ये सच में एक शॉकिंग डिटेल थी।
अच्छी, इसकी जगह पूरी किताब में सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस एक जगह पर अडोनाय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और वो भी कहानीकार के अनुसार खुद सृष्टि के रचयिता के मुख से निकला है।
ये वाकई एक बेहद रोचक और जरूरी पॉइंट है। जब हम ऐसे गहरे टेक्स्ट का विश्लेषण करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि शब्दों का चुनाव जानबूझकर किया जाता है।
तो इस अडोनाय शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है?
अडोनाय शब्द का थेट अर्थ होता है मास्टर या लॉर्ड, यानी स्वामी या सबसे बड़ा मालिक। और इस शब्द का सीधा और गहरा संबंध अथॉरिटी यानी अधिकार और सबमिशन यानी समर्पण से है।
अच्छा, अथॉरिटी और सबमिशन।
हाँ, यहाँ सृष्टि के मालिक खुद अपने लिए अडोनाय शब्द चुन रहे हैं जो आसपास के बाकी पुरातन ग्रंथों में अकेले बिना किसी और टाइटल के आना लगभग ना के बराबर है।
तो इस खास शब्द के इस्तेमाल का आखिर श्रोताओं के लिए आशय क्या बनता है? हम इसे क्या समझें?
इसका सीधा आशय ये है कि ज्ञान तक पहुंचने का आखिरी रास्ता इस एडोनाई के आगे पूरी तरह से समर्पण करने में है, उसकी अथॉरिटी, उसके अधिकार को मानने में है, उन पर पूरी तरह भरोसा करना, उनकी विशाल सोच को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तुरंत बाद स्रोत एक प्रैक्टिकल नैतिक बात भी समझाता है कि बुराई से दूर रहना।
मतलब ये डर और समर्पण कोई ऐसा क्रमकांड या रिचुअल नहीं है जिसे आप किसी मंदिर में परफॉर्म करें। ये एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिकता से जुड़ा हुआ आचरण है। बुराई से बचे रहना ही दरअसल इस ज्ञान को अप्लाई करना है।
बिल्कुल, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट को एकदम प्रैक्टिकल बना देता है।
ये सच में बहुत गहरा है, लेकिन अगर हम चर्चा को आगे ले जाएं, तो एक और बड़ा सवाल जो स्रोत में उभर कर आता है वो है कोहेरेंस, यानी सार्थकता का सवाल।
हाँ, कोहेरेंस बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है यहाँ।
अगर हमें ये ठीक ठीक समझ आ गया कि दुनिया न्याय से नहीं बल्कि एक ऐसी बुद्धि से चल रही है जो हमारी समझ के बाहर है, तो जब किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है तब क्या उसमें हमें कोई लॉजिक या सार्थकता नजर आएगी? क्योंकि इंसान जब भी मुसीबत में घिरता है तो वो उस दुख में सबसे पहले सार्थकता ही ढूंढता है। वो पुकारता है कि मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये विजडम फ्रेमवर्क दुख झेल रहे इंसान को कोई कोहेरेंस प्रदान करता है?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस चर्चा में स्रोत अब यहीं शिफ्ट होता है। जोब के दोस्त जो सार्थकता या कोहेरेंस देख रहे थे वो वही रेट्रीब्यूशन प्रिंसिपल वाला न्याय था, पर वो कोहेरेंस पूरी तरह खोखली निकली।
क्योंकि अगर जॉब उनकी बात मान लेता तो और बुरी हालत हो जाती।
एग्जैक्टली, अगर जॉब सोचता कि हाँ मैं ही बुरा हूँ इसलिए दुख भोग रहा हूँ, तो उसकी दुनिया में कोहेरेंस आने के बजाय और ज्यादा कन्फ्यूजन और निराशा पैदा हो जाती। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि असली ज्ञान वो है जो इस सिस्टम में हकीकत में ऑर्डर और कोहेरेंस लाता है।
लेकिन वो ऑर्डर हमें दिखता कहाँ है?
वही तो बात है, क्योंकि इंसान सृष्टि के नियम और उसकी बारीकियों के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इंसान की उम्मीदों पर यह तय नहीं होगा कि हालात किस दिशा में जाएंगे। ईश्वर का ज्ञान सर्वोपरि है और उसी में सिस्टम का सच्चा ऑर्डर मौजूद है, चाहे वो हमारी आंखों को ना दिखे।
तो ऑर्डर है पर हमारे हिसाब से नहीं है। यहाँ स्रोत में एक और बहुत गहरा थियोलॉजिकल पॉइंट है जो शायद पहली बार में पूरी तरह से समझ ना आए।
कौन सा पॉइंट?
हम अपनी आम भाषा में अक्सर बोलते हैं कि ईश्वर के पास बहुत ज्ञान है या ईश्वर सृष्टि में सबसे बुद्धिमान है, पर स्रोत बताता है कि ऐसी बातें कहना दरअसल उस संचालक के स्वभाव को बहुत कम करके आंकना है। मुझे ये थोड़ा उलझावा लग रहा था, क्या हम उन्हें बुद्धिमान कहकर उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते?
सुनने में ऐसा लगता है कि हम तारीफ कर रहे हैं, पर इसको इस तरह से समझिए। जब हम कहते हैं ईश्वर ज्ञानवान है तो दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जैसे ज्ञान एक अलग आजाद क्राइटेरिया है और सृष्टि का रचियता उस क्राइटेरिया पर खरा उतर रहा है।
जैसे उन्होंने कोई ज्ञान की परीक्षा पास कर ली।
हाँ, वही ना। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि हम किसी बाहरी क्राइटेरिया या नियम के आधार पर उस मालिक को जज नहीं कर सकते। सृष्टि का संचालक ज्ञान रखता नहीं है, बल्कि वो खुद उस ज्ञान का स्रोत और उसकी परिभाषा है।
ओ, मतलब वो खुद डेफिनेशन है ज्ञान की।
बिल्कुल, जैसा अगर हम सोचें कि अच्छा या पवित्र होने का क्राइटेरिया कोई आसमान में रखी अलग रूल बुक तय करती है तो ये गलत होगा। खुद सृष्टि का रचियता ही उसकी परिभाषा है। एनी विजडम वी फाइंड हैज इट्स फाउंडेशन इन हिम।
तो इंसान को किसी बाहरी डिक्शनरी में ज्ञान नहीं ढूंढना है बल्कि स्रोत की तरफ ही देखना है। ये चर्चा सच में उस वेंडिंग मशीन वाले इल्यूजन को बिल्कुल तोड़ देती है।
सही बात है।
तो इस सब को समेटते हुए अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें कि इस इतने गहरे कॉस्मिक विश्लेषण का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जीने वालों के लिए क्या महत्व है, जब हम किसी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो ये एडोनाई का डर और समर्पण हमें ये गहरा विश्वास दिलाता है कि हालांकि हमारे करंट हालात उस जस्टिस के हिसाब से पूरी तरह गलत, अनजस्ट और टूटे हुए लग सकते हैं।
और वाकई इस दुनिया का सिस्टम अक्सर टूटा हुआ महसूस होता है।
हाँ, हमारा दिमाग चीख चीख कर कह सकता है कि ये जो हो रहा है वो न्याय नहीं है, फिर भी इस विश्लेषण से हम उस सृष्टि के मालिक पर भरोसा करना सीख सकते हैं जिसने इस कॉस्मोस को सबसे बेहतरीन और सबसे बुद्धिमान तरीके से बनाया है।
सही कहा।
सबसे जरूरी बात जो इस अध्याय से सीखने मिलती है वो ये है कि हमें जिंदा रहने और उम्मीद बनाए रखने के लिए हर एक चीज के एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हमें हर दुख का सटीक कारण पता होना जरूरी नहीं है।
बेशक, अय्यूब यानी जोब की ये सदियों पुरानी कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है कि मुश्किल आने पर क्रोध में हर चीज का एक्सप्लेनेशन मांगने के बजाय उस विशाल स्रोत पर ट्रस्ट यानी भरोसा करना कहीं ज्यादा अहम और सुकून भरा है।
भरोसा करना सबसे अहम है।
हम उस संचालक की विजडम और उसके इरादों पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे हमारे आपस के हालात कितने ही दुख भरे क्यों न हों। यही सच्ची बुद्धि है और दरअसल यही असली एडोनाई का डर है।
ये एक ऐसी शांति की तरफ इशारा करती है जो किसी आम समझ या सीधे हिसाब किताब से परे है। लेकिन यहाँ इस अध्याय को समेटने से पहले एक ऐसा बड़ा और उलझाने वाला ख्याल है जो इन सब चर्चाओं से निकलता है और रह रहकर मेरे दिमाग में घूम रहा है।
वो क्या है?
जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ बुरा होना। पर अगर हमारी दुनिया एक ऐसी विशाल विजडम के आधार पर चल रही है जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है, और जहां एक भले इंसान का भारी कष्ट सहना उस विशाल ज्ञान के संचालन का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, तो उस बारे में क्या सोचें जब ठीक इसके उलट होता है?
इसके उलट
मेरा मतलब है जब हम जानबूझकर बुराई करने वाले लोगों को, दूसरों का शोषण करने वालों को जिंदगी में आगे बढ़ते और लगातार सफल होते देखते हैं। जब वो दिलों को तोड़ने वाली वेंडिंग मशीन बुरा काम डालने पर भी इनाम देने लगे, क्या उस वक्त उस खोखली सफलता को देखते हुए हमें इस ज्ञान की एक अलग ही तरह की बुद्धि की जरूरत होती है? या फिर उस परेशान करने वाले वक्त में एडोनाई के सामने एक और भी ज्यादा गहरे समर्पण की मांग होती है, ये मानने के लिए कि वो जो बुराई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं वो भी उस एक ऐसे ऑर्डर और ज्ञान का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम शायद इस जीवन में कभी ना समझ पाएं।
ये सच में बहुत गहरा सवाल है छोड़ने के लिए।
ये एक ऐसी सोचने वाली बात है जो हमारे अस्तित्व के बहुत गहरे हिस्सों को छूती है। आशा करते हैं कि इस सदियों पुराने किस्से के इस गहरे विश्लेषण ने सभी सुनने वालों को जिंदगी को एक नए और थोड़े विशाल नजरिए से देखने का नजरिया दिया होगा, और उस टूटी हुई वेंडिंग मशीन की उम्मीद छोड़कर एक असली स्रोत की तरफ देखने का रास्ता दिखाया होगा। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।